अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के षष्ठ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण में आचार्य पिपलाद जी ऋषि सुकेशा के जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं। ऋषि सुकेशा जी की जिज्ञासा है षोडशकल पुरुष विषयक। षोडशकल पुरुष कहां है और उसका ज्ञान होने पर क्या फल प्राप्त होता है, इसे सुकेशा जानना चाहते हैं। तो षोडशकल पुरुष कहां है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया कि इहैव अंतः शरीरे स पुरुष। ये षोडशकल पुरुष इसी शरीर में है और उसका स्वतः स्वरूप तो पुरुष यानी पूर्ण है और कलाएं उसकी उपाधि के तरह उपाधि है, कार्य बन करके उपाधि बन जाती है। प्राणादि 16 कलाएं पूर्ण पुरुष ने उत्पन्न की और उन कलाओं से आविद्यक संबंध करके 16 कल बन गया। ये 16 कलाएं ही असंसारी आत्मा के संसारित्व का निमित्त है। आत्मा स्वतः असंसारी है, संसार का अर्थ है जन्म मरणादि विकार, और जन्म मरणादि विकारों से रहित निर्विकार है आत्मा। इसलिए कठोपनिषद गीता आदि कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के उत्पन्न होने से वह स्वरूपतः उत्पन्न नहीं होता, शरीर के जीर्ण होने से वह वस्तुतः जरा को नहीं प्राप्त करता, शरीर के नष्ट होने से वह स्वरूपतः नष्ट नहीं होता। जैसे आकाश स्वरूपतः उत्पन्न नहीं होता, घटादि की उत्पत्ति जो घटादि आकाश की उपाधि है उनकी उत्पत्ति तथा विनाश का आरोप घटादि उपाधि से उपहित आकाश में होता है। ऐसे ही शरीरादि जो 16 कलाएं हैं इनकी उत्पत्ति तथा विनाश का आरोप परमात्मा में होता है और परमात्मा को भी इन 16 कलाओं की उत्पत्ति आदि के कारण माना गया जन्म मरणादि संसारवान संसारी, स्वतः वह असंसारी है। अज्ञानवशात इन 16 कलाओं के साथ तादात्म्य करके इन 16 कलाओं को ही अपना स्वरूप समझता है और ये 16 कलाएं तो जन्म मरणशील है इसलिए इनका जन्म मरण मान लेता है अपना जन्म मरण। अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कब से है, वो अनादि है, इसलिए अनादिकाल से यह संसारी बना हुआ है। कई कल्प निष्पन्न हुए, उनका लय हुआ, लेकिन इसका संसारित्व बना हुआ है और ये समाप्त कब होगा, जब अज्ञान दूर होगा, संसारित्व का निमित्त है षोडश कलाओं के साथ तादात्म्य, और तादात्म्य का निमित्त है अज्ञान। ये अज्ञान चला जाएगा तो षोडश कलाओं के साथ तादात्म्य निवृत्त होगा, आत्मा स्वतः असंसारी प्रतीत होगा। इसलिए आवश्यक है अज्ञान का निवृत्त होना, और अज्ञान निवृत्त होगा किससे, तो जिसका अज्ञान है उसी के ज्ञान से निवृत्त होगा। घट का अज्ञान पटादि अन्य वस्तुओं के ज्ञान से निवृत्त नहीं होता। घट का अज्ञान दूर करने के लिए घट का ज्ञान ही आवश्यक है। ऐसे जिसके अज्ञान से असंसारी आत्मा संसारी प्रतीत हो रहा है, उसी का ज्ञान संसारित्व का हेतुभूत अज्ञान का निवर्तक बनेगा। तो किसके अज्ञान से संसारित्व की प्रतीति है, स्वयं के ही वास्तविक स्वरूप की, स्वयं के ही निर्विकार स्वरूप के अज्ञान के कारण संसारित्व की प्रतीति है। इसलिए स्वयं के ही वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से वह अज्ञान दूर होगा कि मैं संसारी नहीं हूं अपितु असंसारी पूर्ण पुरुष हूं, ब्रह्म हूं। यह ज्ञान वृत्त्यात्मक अनादि अज्ञान का निवर्तक बनेगा, और ये ज्ञान होने पर अज्ञान ज्ञान के साथ ही साथ निवृत्त होता है, और चित्त भी बाधित होता है, मनोनाश होता है। तीन कार्य एक साथ होते हैं वेदांत में, वो साक्षात्कार की उत्पत्ति और अविद्या की निवृत्ति, मनोनाश। इनमें साक्षात्कार साधन है, अविद्या निवृत्ति और मनोनाश उसका फल है साक्षात्कार का। और ये साक्षात्कार और फल में पौर्वापर्य नहीं है। पौर्वापर्य का अर्थ होता है पहला साधन होगा, उसके बाद फिर अज्ञान दूर होगा कुछ क्षण बाद, और कुछ क्षण बाद मनोनाश होगा, ऐसा नहीं है। ये युगपत होता है, एक साथ होता है। मैं दुखी हूं ऐसा जान करके भी दुखी होता है, ये कह रहे हैं। यही तो दुखी होना है, मैं दुखी हूं ये अनुभव करना ही। और ये क्यों दुखी होता है, अपने मन से अतिरिक्त मन के साक्षी स्वरूप का अज्ञान होने से। दुख तो मन का धर्म है, और मन के साथ तादात्म्य कर लेता है। क्यों तादात्म्य कर लेता है, कि मन का साक्षी जो निर्विकार स्वरूप है उसका अज्ञान होने से। वो अज्ञान कब से है, अनादि है। उसके कारण दुख धर्मी यानी दुख का आश्रयभूत अंतकरण उसमें तादात्म्य कर लिया, और इसलिए दुखी हुआ। दुख का कारण है दुखी अंतकरण को अपना गलती से स्वरूप समझना। हाँ, मन ही मैं हूं ऐसा निश्चय जिसका है वो दुखी रहेगा। हाँ, तो उत्तर तो मालूम ही है आपको। तो हाँ, वो सब कल जो बताया था, आवृत्त चक्षु और ये अमृतत्वम इच्छन, ये सारे साधन चतुष्टय संपन्न होकर के वेदांत के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा श्रवण मनन से। हाँ नहीं कर रहे हैं। हाँ तो ये है श्रुतम हरति पापानी। यदि अधिकारी नहीं है तब भी वेदांत तो सुनते हैं तो वेदांत श्रवण जो अंतकरण में अधिकारित्व का प्रतिबंधक किल्बिश है पाप है उसे दूर करता है श्रुतम हरति पापानी। और फिर वह अधिकारी बना करके ज्ञान कराता है। लेकिन इसके लिए फिर बहुनाम जन्मनाम अंत है। या तो पहले से साधन हुआ हो आज साधन चतुष्टय संपन्न जो व्यक्ति दिखते हैं वे एक ही जन्म की साधना से तो नहीं हुए हैं। पहले की उनकी साधनाएं हैं इसलिए उनका चित्त शुद्ध हुआ नित्यानित्य वस्तु विवेक हुआ वैराग्य हुआ समाधि षट संपत्ति तीव्र मुमुक्षा हुई उनको। हाँ तो ऐसे जो है जिनकी साधनाएं पहले की कई जन्मों से पहले से ही शुरू हैं उनमें ये इस जन्म में दिखेगा। और जो बाद में लगे हैं दो चार जन्म पहले से तो उनके चित्त में भी थोड़ी शुद्धि है इसलिए तो वेदांत समझ में आएगा और सुन रहा है रुचि आ रही है। नहीं अनुभव में आता तब भी रस है सुनते समय आनंद आता है तो समझना चाहिए चित्त हमारा इतना प्रदूषित नहीं है कि हम अपने आप को बिल्कुल हताश समझे। हताश नहीं होना है हमको रुचि आ रही है समझ में आ रहा है तो कुछ तो योग्यता हमारे अंदर है कुछ कमी है अनुभव नहीं हो रहा है तो वो हाँ और वो जो कमी है उस कमी को दूर करने के लिए विचार मनन निध्यासन करते रहें या पूर्व पूर्व साधन भी जपादि करते रहें उससे योग्यता आती है वो सहायक बन जाते हैं। बहिरंग साधन भी करते रहे अंतरंग साधन श्रवणादि भी होता रहे समय बांट करके इनका समुच्चय हो सकता है क्रम समुच्चय। उससे जो बहिरंग साधनों से निवृत्त दोष है वो भी निवृत्त होते रहेंगे श्रवण से विवेक को पुष्टि मिलती रहेगी ये होगा। तो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार अविद्या की निवृत्ति और मनोनाश ये तीनों साथ साथ होते हैं यद्यपि इनमें साध्य साधन भाव है। साक्षात्कार साधन है और ये साध्य है मनोनाश अविद्या निवृत्ति। और मनोनाश हुआ तो फिर संसार नहीं रहेगा। मनोनाश का अर्थ है मन का बाध ज्ञान से जो नाश होता है ना ज्ञान से नाश का अर्थ बिल्कुल ही समाप्त तो होना ऐसा नहीं बाध। और जब मनोनाश होगा यानी मन का बाध होगा आपके तो आपके लिए फिर संसार भी बाधित होगा क्योंकि मैत्री उपनिषद में कहा गया ये आपका चित्त ही आपका संसार है। चित्तमेव तु संसार ये चित्त ही संसार है। और युक्ति भी यही बताती है चित्तमेव तु संसार ये श्रुति हुई मैत्रेय उपनिषद का वाक्य है। और एक युक्ति भी है तत्सत्वे तत्सत्वम तदाभावे तदाभाव। यदि चित्त है तो संसार है चित्त नहीं है तो संसार भी नहीं है। जागृत और स्वप्न में चित्त है तो संसार प्रतीत होता है, भय भी होता है, जन्म मरण आदि की भी प्रतीति होती है। गहरी नींद में चित्त का लय हो जाता है तो वहां पर कोई भी अपने आप को जन्म मरण आदि से युक्त नहीं समझता, संसारी नहीं समझता। तो संसार नहीं है वहां पर, चित्त नहीं है तो संसार नहीं है। स्थान है सुसुप्ति और जागृत स्वप्न में चित्त है तो संसार है। इसका अर्थ है कि ये युक्ति भी संसार चित्त को ही बता रही है, चित्त के होने से ही संसार है, चित्त नहीं है तो संसार नहीं है। और वो जो चित्त है वो बाधित हो जाता है ज्ञान से, उसका चित्त का मन का यानी चित्त का नाशक है ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान। और चित्त बाधित हुआ, निवृत्त हो गया, नष्ट हो गया तो संसार भी बाधित हो जाता है। और संसार के कारण संसार है, यही कलाएं प्राणादि सारी कलाएं विद्यमान होने से ही तो संसारी है। ये सारी की सारी बाधित हो जाएगी ज्ञान से। बाधित हो गई तो प्रारब्ध जब तक रहेगा तब तक बताया गया था जीवन मुक्ति, और प्रारब्ध के समाप्त होने पर विधेय मुक्ति। उस विधेय मुक्ति को ज्ञान के फलभूत नदी के दृष्टांत से समझाया, जब तक नदी समुद्र के साथ मिलती नहीं है तभी तक उसका परिच्छिन्न एक रूप रहता है और नाम रहता है अलग अलग, ये गंगा है, यह नर्मदा है, ये यमुना है, ये गोदावरी है, तो ये सिंधु है, और उनका अपना अपना एक दो किनारे को मिलकर के चलने वाला बहने वाला जल रूपी स्वरूप है। बहते हुए जल निश्चित स्थान से निकल करके स्थान विशेष तक बहने वाले जल का नाम है नदियां, और समुद्र है स्थिर जल का नाम, असीमित जो स्थिर जल का मतलब अचल जल, और उस जल का नाम है समुद्र। उस अपरिछिन्न भाव को नदियां जब तक प्राप्त नहीं करती तब तक उनका कला स्थानीय नाम रूपात्मक उपाधियां औपाधिक स्वरूप है, उपाधियां विद्यमान होने से, और उन उपाधियों को छोड़ करके नदियां अपनी अपरिछिन्नता को प्राप्त करती हैं। ऐसे ही ये बताया जा रहा है कि नदी के तरह एवं एव अस्य परिद्रष्टुहु, ये जो पूर्ण पुरुष का आत्मरूप से अनुभविता है, जिसे ऐसा साक्षात्कार हुआ है अपने ही वास्तविक स्वरूप का, जो अनादि अज्ञान को तथा मन को निवृत्त कर चुका है, बाधित कर चुका है, अविद्यानाशक तथा मनोनाशक साक्षात्कार जिसको हुआ उसे मूल मंत्र में परिद्रष्टु शब्द से लिया गया। अस्य परिद्रष्टुहु यानी परिद्रष्टा, परिद्रष्टा का अर्थ है साक्षात्कारवान ज्ञानी। इसकी उपाधिभूत जो ये 16 कलाएं हैं, इन 16 कलाओं के कारण का ज्ञान से नाश यानी बाद होने से ये कलाएं भी बाधित होती है। तो इसलिए कहा इमा षोड़स कला। अरे है कैसी? तो पुरुषायणा, तो पुरुष है अयन यानी अधिष्ठान जिन कलाओं का, पुरुष यानी आत्मा, और आत्मा से ही ये निष्पन्न हुई है, आत्मा में ही स्थित है, आत्मा में ही विलीन हो जाती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है पुरुषायण। पुरुष है अधिष्ठान जिनका, तो ये क्या होती है कि पुरुषम प्राप्य, जैसे नदियां समुद्र को प्राप्त करके छोड़ देती है अपने नाम रूप को, ऐसे पुरुषम प्राप्य अस्तं गच्छन्ति, ये अस्त को प्राप्त हो जाती है। कौन कलाएं अस्त को प्राप्त होती है का मतलब नष्ट हो जाती है, नष्ट होती है का मतलब बाधित, यहां जो उपाधि है प्रारब्ध वो भी समाप्त हो गया, तो फिर उनका अधिष्ठान रूप से ही अवस्थान होगा। वो थी अधिष्ठान से अलग नहीं, अधिष्ठान रूप ही थी, अध्यस्त का वास्तविक स्वरूप माना जाता है अधिष्ठान ही, अध्यस्त सर्प रस्सी ही है, अज्ञान से अलग सा दिख रहा है, अज्ञान से उसका रस्सी से अलग अस्तित्व प्रतीत हो रहा है, उसका कोई अपना अस्तित्व है नहीं, रस्सी का अस्तित्व ही रस्सी के अज्ञान से रस्सी में भासमान सर्पादि का है, इसलिए उनका अपना भ्रांति से प्रतीयमान जो अस्तित्व है उसका समाप्त होना और अधिष्ठान का ही अधिष्ठान का अस्तित्व प्रतीत होना, ये है कलाओं का अस्त होना। जैसे सूर्यास्त होता है तो फिर सूर्य का दर्शन नहीं होता है ना, ऐसे कलाओं का अस्त हुआ का मतलब फिर अलग से कलाएं उनके अधिष्ठान से स्वतंत्र सत्ता वाली प्रतीत नहीं होगी, अधिष्ठान ही अधिष्ठान प्रतीत होगा। ये तो बता दिया अभी, दो चार दिन में ही बता दिया है तो भूल गए, तो अभी बताएंगे तब भी भूल जाएंगे, तो न बताना ही अच्छा है। थे आप, प्राणादि कलाओं की उत्पत्ति पुरुष से हुई, पुरुष से हुई है ये बताया कि नहीं? सर्प आया कहां से? रस्सी से ही आया है, रस्सी के अज्ञान से। ऐसे प्राणादि कलाएं पुरुष के अज्ञान से, पुरुष से ही प्रकट हुई है और पुरुष में ही स्थित है, पुरुष में ही विलीन हो जाती है। हाँ, तो ये अज्ञान ज्ञान से समाप्त हुआ तो कलाएं भी पुरुष से अलग शेष नहीं रहेगी, इसलिए कहा कि पुरुषम प्राप्य अस्तं गच्छन्ति। पुरुष को प्राप्त कर लिया का मतलब पुरुष में आपकी अहंता स्थित हो गई, यही पुरुष की प्राप्ति है। पुरुष की मतलब, पुरुष का मतलब आत्मा, पूर्ण तत्व ब्रह्म। इन कलाओं में से अहम बुद्धि हट गई और हमेशा हमेशा के लिए अहम बुद्धि का आलम्बन ब्रह्म बन गया, आश्रय ब्रह्म बन गया, तो माना गया पुरुष की प्राप्ति हुई। तो आत्म रूप से अभी तक अज्ञानवशा जिनको मैं समझ रहे थे वो अब अहम वृत्ति कभी भी नहीं आनी है इन कलाओं में, तो इनका अस्त हो जाएगा, मैं के रूप में ये भाषेगी नहीं, अदर्शन इनका यही अस्त होना है, फिर मैं के रूप में नहीं भाषेगी। ज्ञानी को मय के रूप में ब्रह्म ही ब्रह्म भाषित होता है, कलाएं मय के रूप में नहीं भाषित होती, तो फिर ज्ञानी कैसे? कलाएं भी मय के रूप में भास रही हैं और ज्ञानी भी हैं, तो अज्ञानी को भी मय के रूप में ही कलाएं भासती हैं, ज्ञानी को भी मय के रूप में कलाएं भासती है, तो फिर ज्ञानी कैसे? तो ज्ञानी नहीं है। तो ज्ञानी के लिए इन कलाओं का अस्त हो जाता है जब प्रारब्ध का विलय हो जाता है, विधेय कैवल्य की प्राप्ति के समय। तो अस्तं गच्छन्ति, और जब पुरुष में इनका स्वरूप लय हो गया तो अलग अलग अभी तक ये प्राण है, यह श्रद्धा है, यह भूत सूक्ष्म है, यह इंद्रियां हैं, ये जो नाम थे इनके, और इन नामों का अर्थभूत रूप था, इन दोनों का भी भेदन हो जाता है। इसलिए कहा कि भिद्यते चासाम नाम रूपे। तो ये जो प्राणादि 16 कलाएं हैं, इन कलाओं का नाम और रूप छूट जाता है, क्योंकि ये स्वरूप ही नहीं रहा इनका, अस्त हो गई। कोई पदार्थ दिखे तो आप उसे किसी न किसी नाम से व्यवहार करें और उसका जो आकार प्रकार है उसे रूप समझ लें, लेकिन यत्रत्वस्य आत्मैव भूतत् केन कम पश्येत् केन कम विजानीयात् के अनुसार आत्मा ही आत्मा है। पुरुष को प्राप्त करके पुरुष रूप ही हो गई कलाएं, तो उनका नाम रूप भी छूट गया। उनका अस्त होना है, नाम रूप छूटना, क्योंकि अनात्म पदार्थ का स्वरूप, जगत का स्वरूप नाम रूप ही है। पांच है न कुल मिलकर के अंश, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेति पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। तो अस्ति भाति प्रिय यानी सत चित आनंद, ये तीन, और नाम और रूप, इनमें से सत चित आनंद ये तीनों ब्रह्म के स्वरूप है। तीन शब्दों से कहे गए, तीन शब्दों से कहा गया, ब्रह्म का तीन रूप नहीं है, इन तीन शब्दों से परिलक्षित एक ही रूप है, वो एक रस है। और इन तीनों से अतिरिक्त जो बचा वो है नाम और रूप, वो जगत का रूप है, वही जगत है, नाम रूप का ही नाम है जगत। और कलाएं जगत ही है, और ये जो जगत रूपा कलाएं हैं इनको दो शब्दों से कहना होगा, तो नाम रूप। तो कलाओं का अस्त हुआ, पुरुषम प्राप्य अस्तं गच्छन्ति कहा, तो इनके अस्त होने का स्वरूप क्या है? तो इनके अस्त होने का स्वरूप है कि नाम रूप का भेदन, समापन। अब अलग से इन कलाओं का नाम और कलाओं का रूप न भासना। जब अज्ञान था जब तक, तब तक दृष्टा, दृश्य, दर्शन ये त्रिपुटी थी, जगत था, द्वैत था, और प्राणादि कलाएं मय के रूप में भास रही थी, इदं के रूप में भास रहा था अन्नादि कलाओं का कुछ भाग। अब जब अधिष्ठान का ज्ञान हुआ तो ये अध्यस्त कलाएं अधिष्ठान से अलग रही नहीं, उनका अस्त हुआ का नाम रूप समाप्त हुआ। इसलिए छांदोग्य में कहा गया कि ये जो त्रिवृत्कृत अग्नि है का मतलब स्थूल अग्नि है, ये स्थूल अग्नि अपने उपादान कारण भूत सूक्ष्म भूतों से अलग नहीं है। स्थूल अग्नि में जो लाल रूप, सफेद रूप और काला रूप, ये तीन रूप दिखते हैं, उसमें से कहा गया यद अग्नेः लोहितम रूपम तत् तेजसः। तेज शब्द से लेना सूक्ष्म तेज, जो लाल रूप है अग्नि का वो तेज का रूप है। यद लोहितम रूपम तद तेजसः और यद शुक्लम तद अपाम और यत कृष्णम तद अन्नस्य। तो लाल रूप को आप सूक्ष्म तेज रूप समझ लो और अग्नि के सफेद रूप को समझ लो जल रूप, सूक्ष्म जल रूप, और कृष्ण रूप को समझ लो पृथ्वी रूप, अन्न यानी पृथ्वी। तो स्थूल अग्नि में से इन तीन रूपों को निकाल लेंगे तो फिर अग्नि नाम का क्या पदार्थ बचेगा? तो अपागात अग्ने है अग्नित्वम, अग्नि का अग्नित्व चला गया। अग्नि का अग्नित्व चला गया का मतलब अब अग्नि नाम का पदार्थ, स्थूल अग्नि नाम का पदार्थ नहीं रहा। जो वो वस्त्र पहने हैं उस वस्त्र में से एक एक करके धागा अलग करते जाएंगे, तो जितने धागों से वस्त्र बना है उन सारे धागों को एक एक करके निकाल करके अलग करेंगे तो वस्त्र नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। कार्य कारण से अलग नहीं होता। तो ये जो लोहित रूप, शुक्ल रूप और कृष्ण रूप, ये है एक प्रकार से तन्मात्राएं, सूक्ष्म भूत। और सूक्ष्म भूतों से अलग स्थूल भूत कोई है ही नहीं। उन स्थूल भूतों का केवल एक प्रकार से सूक्ष्म भूतों के संयोग विशेष से भान होना ही कार्य का अस्तित्व है। कार्य अलग कोई है नहीं, न होता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए वेदांत में कार्य की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानी है। यद्यपि कार्य सत्य है, सांख्यों के मत में भी कार्य सत्य है, वेदांत मत में भी कार्य सत्य है, लेकिन वेदांती का कार्य कारणात्मना सत है। मिट्टी के रूप से घड़ा सत्य है, घटत्वेन घट सत्य नहीं है। कार्यात्मना कार्य तो तीनों कालों में मिथ्या ही है, प्रातिभाषिक ही है। जिस समय घट घट रूप से प्रतीत हो रहा उस समय भी उसमें से यदि मिट्टी को हटा दिया जाए विवेक से तो मिट्टी से अलग है ही नहीं हो, उसमें अस्तित्व जो कारण रूप से अन्वित मिट्टी है ना, उसी का है, मिट्टी रूप से ही विद्यमानता है। ऐसे जगत जिस समय हम देख रहे हैं उस समय भी जगत का अस्तित्व केवल उसका जो मूल कारण है सत, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, वही है। उसको यदि निकाल लिया जाए जगत में से अस्तित्व को, तो जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो कारणात्मना वेदांतियों का कार्य सत है और कार्यात्मना उसका कभी भी अस्तित्व नहीं है, उत्पत्ति के समय भी, स्थिति के समय भी और लय के समय भी। और सांख्यों के यहां तो कार्य रूप से कार्य सत है, घट रूप से घट सत है। आरंभवादी जो तार्किक है उनके यहां भी, परिणामवादी जो सांख्य है उनके यहां भी, परिणाम परिणामी से अलग हुआ करता है, उसका अपना अस्तित्व हुआ करता है। तो वेदांत में ये जो 16 कलाएं हैं नाम रूपात्मक जगत है, वो जगत रूपम तत्वद्वयम का है ना, और यह तभी तक है करके प्रतीत होगी जब तक आप विवेक से इन नाम रूपात्मक जगत के साथ अन्वित हुआ सत चित और आनंद को विवेक से अलग करके नहीं देखते। जैसे ही विवेक से उसे अलग करेंगे तो नाम रूप को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, वो रहेगा ही नहीं। सारे धागों को निकालेंगे तो वस्त्र नाम की कोई वस्तु ही रहेगी नहीं। ऐसे ब्रह्म ही ब्रह्म होता है। तो ये कहा कि भिद्यते चासाम नाम रूपे, वो उनका अस्त होना है अपने विवर्त उपादान कारण से अलग कार्य रूप से अवस्थित न होना, विवर्त कारण रूप से ही अवस्थित होना, यह है नाम रूप का भेदन। जैसे अग्नि के तीन रूप अग्नि से अलग कर दिए तो स्थूल अग्नि स्थूल अग्नित्व रूपेण नहीं है किंतु सूक्ष्म भूतों के रूप में विद्यमान है। सूक्ष्म तेज सूक्ष्म जल सूक्ष्म पृथ्वी के रूप में है। ऐसे ही कलाएं अपने कला के रूप में न रह करके पुरुष के रूप से रहेगी। तो भिद्यते चासाम नाम रूपे, और इन्हीं कलाओं के साथ मिलकर के अलग अलग नाम और रूप वाले जीव प्रतीत हो रहे थे। अब ये जीव में अनेकत्व अनेक नाम और रूप का हेतुभूत कलाएं ही समाप्त हो गई। तो घटादि आकाश की उपाधियों के नष्ट होने पर उनसे घिरा हुआ जो आकाश वह नष्ट नहीं होगा, महाकाश में अवस्थित होगा, महाआकाश रूप से प्रतीत होगा। जैसे ऐसे ही ये कहते हैं कि पुरुष इत्येवं प्रोच्यते, उस समय इन 16 कलाओं के साथ अज्ञान वशात तादात्म्य करके जो भोक्ता जीव इत्यादि नामों से कहा जा रहा था वह अब पुरुष इस नाम से ही कहा जाएगा। समुद्र में मिली हुई नदियों को गंगा नर्मदा आदि नामों से नहीं कहा जाता, वो रहती हैं और उनका नाम होता है समुद्र, समुद्र नाम से कही जाती है। ऐसे ये पुरुष इत्येवं प्रोच्यते, तो ज्ञानी शरीर छूटने के बाद यानी उपाधियों से रहित होने के बाद पुरुष यानी ब्रह्म इस नाम से कहा जाता है। कला रूपी उपाधियां जब तक थी तब तक जो उसका नाम था उपाधि का उस नाम से कहा जा रहा था, अब ब्रह्म के नाम से कहा जाएगा, परिलक्षित होगा शास्त्र में। तो प्रोच्यते यानी शास्त्रेण प्रोच्यते, ब्रह्मज्ञानी को विधेय कैवल्य प्राप्त ब्रह्मज्ञानी को शास्त्र ब्रह्म इस नाम से कहता है, पुरुष इस नाम से कहता है। अब यानी जीवन मुक्ति अवस्था में ये बाधित रहेगी और शरीर छूटेगा तो इनका स्वरूप लय हो जाएगा। आगे कहते हैं कि स एषो अकलो अमृतो भवति, तो स एषः यानी ज्ञानी क्या होता है, तो अकल होता है, अकल और अक्कल, उसमें अक्कल में तो डबल ककार है ना, यहां अकल एक ककार है, वो अक्कल होता है ऐसा नहीं, अकल होता है। हाँ, अकल का अर्थ है कला रहित, निष्कल, अकल कहो निष्कल कहो, तो स एषो अकलो भवती, वो निष्कल हो जाता है, कला उनसे रहित हो जाता है, अनादिकाल से अज्ञानवशात भासमान कलाओं से युक्त अभी तक अपने आप को अनुभव कर रहा था भ्रांति से, वह अब निष्कल होता है। प्रकाश में रस्सी का ज्ञान होते ही सर्प क्या हो गया, रस्सी हो गया। ऐसे ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, और ब्रह्म निष्कल है, ब्रह्म की उपाधिभूत कलाएं नहीं है, जीव की है। तो इसलिए कहते अकलो भवती, जिन कलाओं के कारण संसारी अपने आप को प्रतीत कर रहा था, अनुभव कर रहा था, वह कलाएं अब छूट गई, तो निष्कल हो गया, असंसारी हुआ। और कला निमित्त तक ही मरण था, कलाएं मर रही थी, तो मान रहा था मैं मर रहा हूं कलाओं में तादात्म्य करके। अब कलाएं नहीं रही मरण की निमित्त भूता, तो अमृतो भवति, वह अमृत होता है, अविनाशी होता है, उसे फिर जन्म मरणादि संसार की प्रतीति नहीं होती। ये नहीं कि ये अनुभव करेगा कि अब मैं अमर हूं, पहले मरने वाला था। ब्रह्मज्ञान होने पर वो ये अनुभव करता है कि मेरा कभी भी जन्म हुआ ही नहीं, कभी मैं संसारी था ही नहीं। स्वप्न से जगने वाला ये थोड़ी महसूस करता है कि इस समय मैं अकेला हूं, और जिस समय स्वप्न देख रहा था उस समय इस कमरे में अनेकों लोग थे, करोड़ों लोग थे करके। वो जगने के बाद ये महसूस करता है कि जिस समय करोड़ों को देख रहा था स्वप्न में, उस समय भी मैं अकेला ही था, कोई स्वप्न का था ही नहीं मेरे साथ, खाली हो तो प्रतीति मात्र थी, भ्रांति मात्र थी। ऐसे ब्रह्मज्ञानी ये अनुभव करता है कि मेरा कभी जन्म हुआ ही नहीं, अभी तक अनादिकाल से जो भी संसार प्रतीत हो रहा था वो भ्रांति थी, स्वप्न था, अब मैं जग गया हूं। तो जगने के बाद स्वप्न कहां जाता है, जगने वाले के स्वरूप में ही विलीन हो जाता है। ऐसे परमार्थ में जो जग जाता है तो उसके लिए जागृत अवस्था रूपी जो स्वप्न है उसके स्वरूप में विलीन हो जाता है, उसे अलग नहीं रहता। तो इसलिए कहते हैं अमृतो भवति, निष्कल होने के कारण, मरण के निमित्त भूता कलाओं से रहित होने के कारण अब वह अमृतो भवति, अमृत है। ये जो ब्राह्मण भाग के द्वारा कहा गया ज्ञान का फल, ब्राह्मण भाग अपने द्वारा उक्त ज्ञान के इस फल का समर्थक मंत्र बता रहा है। ब्राह्मण भाग भी वेद है और मंत्र भाग भी वेद है, तो दोनों दोनों प्रकरण मंत्र में भी और ब्राह्मण में भी यही कोई अर्थ कहा जाता है तो माना जाता है वह सुनिश्चित अर्थ है। अनेकों वाक्यों से एक ही बात प्रतिपादित हो जाए तो माना जाता है वह अनेकों प्रमाणों से निश्चित है, सुदृढ़ है। तो ब्रह्म ज्ञान का फल जो ब्राह्मण भाग के द्वारा बताया गया उसे बताने वाले मंत्र का अवतरण वाक्य है ब्राह्मण में कि तदेश श्लोक, तो तद यानी तस्मिन अर्थे यानी ब्रह्मज्ञानी की कलाएं ब्रह्म को प्राप्त करके समाप्त होती है और ब्रह्मज्ञानी असंसारी ब्रह्म भाव में अवस्थित होता है। हमेशा हमेशा के लिए वह जन्म मरणादि संसार से मुक्त हो जाता है। ये अर्थ तत्शब्द से लीजिए, ये ब्रह्म ज्ञान का एक फल है और यही फल बताने वाला एष मंत्र श्लोक। श्लोक शब्द का अर्थ है मंत्र और एष का अर्थ है जो बताया जा रहा है। षष्ठ मंत्र आ रहा है वो है ब्राह्मण भाग के द्वारा उक्त अर्थ का समर्थन करने वाला मंत्र। तो इस मंत्र की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।